તારીખ 19/9/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 37
આજે પર્યુષણ પર્વનો ત્રીજો દિવસ છે. ધર્મની આર્જવતા એટલે સરળતાનો સ્વરૂપ કેવું છે એ બીજું ગુરુદેવ છે સમજાવે. ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ એટલે ઉત્તમ એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વક વિતરાગ ભાવરૂપ સરળતા, આર્જવતા એટલે સરળતા. સરળતા બે પ્રકારે છે. એક શુભ ભાવરૂપ સરળતા છે અને એક વિતરાગ ભાવરૂપ સરળતા છે. મુખ્યપણે મુનિ દશામાં વર્તતા ધર્મોનું વર્ણન હોવાથી ચારિત્રને ના અનુસંધાનમાં આચાર્ય મહારાજે એનું વર્ણન કર્યું છે અને મુનિરાજ તો સમ્યક દર્શન સહિત જ ચારિત્રની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવર્તે છે, તેથી તેમને ઉત્તમ સરળતા હોય છે. મુમુક્ષુ જીવને પણ સરળતા એ એવો ગુણ છે કે જે સમ્યક દર્શન પામવાનું મુખ્ય કારણ છે. એટલે ઉત્તમ આર્જવતા પામવાનું એ મુખ્ય કારણ છે. સરળતામાં કષાયની મંદતા ઉપરાંત દર્શન મોહની વિશુદ્ધિ થવાનો પણ પ્રકાર વિશેષપણે હોય છે. એ એક સરળતાની વિશેષતા છે. આત્માના જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં કપટનો ઉત્પન્ન ભાવ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો તે ઉત્તમ સરળતા છે. શું છે? જ્ઞાતાપણે પરિણમવો, જ્ઞાતા ભાવે પરિણમતા પોતાના આત્મામાં કપટ નિષ્કપટપણું રહેવું, કપટનો અભાવ થવો, કપટ નામના એટલે માયા નામના કષાયનો અભાવ થવો તેને ઉત્તમ માર્ગવ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. મુનિરાજને કેવી સરળતા હોય છે, કેવી આર્જવતા હોય છે એનું વર્ણન શ્રીમદજીએ અપૂર્વ અવસરમાં કર્યું છે. દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં. માયા ક્યાં થાય છે કે જીવને નુકસાન થતું હોય એ બચાવવા માટે માયા કરે છે, અથવા વધુ લાભ મેળવવા માટે માયા કરે છે. આ વ્યાપારીને તો સહેજ હોય છે, તો સહેજે સહેજે માયાચાર થાય છે એ તિર્યંજ ગતિનું કારણ છે. કેમ કે તિર્યંચો બધા આડા શરીર વાળા છે. તિર્યંચ એટલે આડું, માયા પણ આડોડાય છે એક પ્રકારની. એનું બીજું એક રૂપ જીદ પણ છે. ક્યાં? શું? જે કોઈ પોતાના વિચારને છોડી ન શકે, સાચો અભિપ્રાય સાચી વાત સામે મળવા છતાં પણ એનાથી છૂટી ન શકે, એવી જે પકડ એને પણ માયાના પરિણામ કહેવામાં આવે છે. અથવા જેટલા કોઈ પ્રકારના અસરળતાના પરિણામ છે તે આર્જવથી સરળતાથી વિરુદ્ધ છે એમ સમજવું. આત્મા જ્ઞાનાનંદની મૂર્તિ છે. ક્રોધ માન માયા લોભ રહિત છે. તેને જેવો છે તેવો સમજવો, અર્થાત શ્રદ્ધામાં વક્રતા ન કરવી, સ્વીકાર કરવામાં શ્રદ્ધામાં વક્રતા નહીં કરવી, તે સમ્યક દર્શન રૂપ સરળતા છે, એને સમ્યક દર્શન પૂર્વકની સરળતા કહેવામાં આવે છે। ચૈતન્ય સ્વરૂપને જેમ છે તેમ ન માનતા, અસરળતા કરીને પોતાને સ્વયંને પુણ્ય પાપ વાળો માનવો, તે અનંતુ કપટ છે, અનંત કપટ છે। હું પુણ્ય કરવા વાળો તે અનંતુ કપટ છે, અનંતાનુબંધીની માયા થઈ ગઈ ત્યાં, એમ કહેતા। કોઈ પરના સંગથી કે પુણ્ય પરિણામથી આત્માને લાભ માનવો તે અનંતી વક્રતા છે અથવા તે અનાર્યતા છે। આર્ય અને અનાર્ય શબ્દનો અર્થ કૃપાળુ ગુરુદેવે કર્યો છે। સરળતા આર્ય જીવને હોય છે, અસરળતા કરે છે તે અનાર્ય છે। આપણે જંગલી જેને કહીએ છીએ, જંગલમાં રહેનારા પશુ તે જંગલી, અને અનાર્ય કે વૃત્તિ વાળા અસરળ પરિણામ વાળા પણ અનાર્ય કહેવામાં આવે છે। આર્ય શબ્દ એનો અહીંયા અર્થ કર્યો છે, તે અનાર્ય છે। આર્ય એટલે સરળ, જેવું સહજ જ્ઞાયક મૂર્તિ આત્મ સ્વરૂપ છે તેવું જ માનવું, જરા પણ વિપરીત ન માનવું, તે સરળતા છે। અને તેની સમજણમાં આડાઈ એટલે વિપરીતતા કરીને વિપર્યાસ, એ પણ અસરળતાનો પ્રકાર છે। મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ ચાર કષાયમાંથી માયા કષાયમાં જાય છે, શેમાં જાય છે, માયાની સાથે એને સંબંધ છે, કેમ કે એમાં વિપર્યાસ આવે છે ને। એ આડાઈ કરીને કોઈ વિકલ્પ કે વ્યવહારના આશરે લાભ માનવો તે અનાર્યતા છે, પુણ્ય બાંધે પણ અનાર્યતા છે, એમ કે છે। વ્યવહાર રત્ન ત્રય પણ રાગરૂપ છે તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી। આત્મ સ્વરૂપ જ્ઞાયક તત્વ તો પુણ્ય પાપ રહિત છે, તેને રાગથી પરાશ્રય ભાવથી લાભ માનવો તે અનંત કપટનું સેવન છે, એવું ગુરુદેવનું પ્રવચન આવ્યું છે। કે આ રીતે ધર્મના ક્ષેત્રમાં વિપરીત માન્યતા અને વિપરીત સમજણ રહે છે તે જ માયાચાર છે, અનંતાનુબંધીનો કષાય છે। તેનો ત્યાગ કરવો મુમુક્ષુએ અને સમ્યક દર્શન પૂર્વક વિતરાગી સરળતાને પ્રાપ્ત કરવી તેને આર્જવ ધર્મ કહેવામાં આવે છે। એ આર્જવ ધર્મને વિશે સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યાન છે। તો વો તો અકામ પણે હો ગયા હૈ, મેને અજ્ઞાન ભાવ મેં સરળતા ભી હુઈ તો મનુષ્યપણા હો ગયા। ચાર ગતિ કા કારણ મેં મનુષ્ય ભાવ હોને કા કારણ સરળપના હૈ, સરળતા વિશેષ से मनुष्य गति मिलती है। बिना समझ ये असरलता हुई है, समझ पूर्वक ज्ञान पूर्वक होती तो नहीं आता, तो फिर असरलता नहीं होती। मनुष्य में से फिर पशु होता कि नहीं होता दूसरा भाव में, तो असरलता का परिणाम क्या। जीव अज्ञान भाव से कभी भी कैसा परिणाम कर लेता है इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या बात है, अज्ञान भाव में अपना हित और अहित का ज्ञान नहीं होने से किस भाव से मुझे नुकसान है, किस भाव से मुझे लाभ है आत्मा को, इसका परिज्ञान नहीं होने से वो अपने को नुकसान होवे ऐसा परिणाम कर बैठता है, तो कैसे भी दुर्गति में चला जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने ये बात कही कि तू सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर, तो कुछ थोड़े भव में तुझे निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। मोक्ष मार्ग में आने से इसका फल मोक्ष अल्प भव में होता ही है। अगर जीव मोक्ष मार्ग में नहीं आता है तो परंपराए दुर्गति में जाकर के वो निगोद में चला जाता है। दो हजार सागर से ज्यादा त्रस पर्याय की स्थिति नहीं है। त्रस में तो दो इंद्री भी आ गया, दो इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय की पर्याय जो है उसका ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर है काल। इसमें मनुष्यपणा या कहीं भी संगनी पंचेंद्रियपणा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष मार्ग की नहीं हुई तो इस जीव को निगोद में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता है, फिर निगोद में से अनंत काल के बाद निकलता है। ऐसा एक जोखिम है, उसको मिटाने के लिए शीघ्रता अति शीघ्रता से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, धर्म की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, ये ज्ञानियों का उपदेश है। अभी चलता अधिकार में समय सार संवर अधिकार की गाथा 181, 82, 83 की गाथार्थ चलता है। गाथार्थ में ये कहा कि उपयोग मैंने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की क्रिया जो जानने रूप होती है, उसमें क्रोधादि कषाय का अभाव है, कर्म का परमाणु और उसका उदय का भी अभाव है, और शरीर आदि संयोग देह मन वाणी मकान घर कुटुंब परिवार सचेत अचेत कितना भी जो संयोग है वो तो सभी प्रकार का ज्ञान की क्रिया में अभाव है। मैंने ज्ञान में नहीं है, ऐसा अविपरीत ज्ञान। इस ज्ञान को कैसे कहते हैं कि ऐसा अविपरीत ज्ञान, मैंने ज्ञान राग से भी भिन्न है, क्रोधादि भाव से भी भिन्न है, कर्म का उदय से भी ज्ञान मैंने आत्मा भिन्न है, और शरीर आदि संयोगिक पदार्थ से भी ज्ञान स्वरूपी आत्मा भिन्न है। ऐसा भिन्नपणे का ज्ञान को अविपरीत ज्ञान कहते हैं यहाँ पर आचार्य महाराज। ऐसा ज्ञान जबी जीव को होता है, ऐसा ज्ञान होता है मतलब ऐसा समझने पूर्वक ऐसा अनुभव ज्ञान होता है, ऐसा लेना क्या, वरना तो ये कहेंगे कि ऐसा समझ में तो आ गया तो हमको अविपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ, कि अनुभव ज्ञान को ही यहाँ पर ज्ञान कहने में आता है। सिर्फ समझ में आवे उसको सम्यक ज्ञान कहते नहीं है। ऐसा अनुभव ज्ञान जीव को होता है मतलब राग होता है तो राग से भिन्न ज्ञान में आत्मा का अनुभव होवे, कर्म का उदय होने पर भी अनुकूलता प्रतिकूलता से भिन्न में हूं, मुझे कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, ऐसा अपना ज्ञान होवे उदय से भिन्न, और शरीर आदि पदार्थों में, परिवार आदि में मेरापणा नहीं भाषमान होवे। क्या? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शरीर है, ये मकान मेरा है, ऐसा जो भी कर्म का उदय से जो भी संयोग प्राप्त है उसमें मेरापणा नहीं होवे, ममत्व नहीं होवे, भिन्न ज्ञान में आत्मा का अनुभव ज्ञान रहे, उसी को अविपरीत ज्ञान कहने में आता है। ऐसा ज्ञान जब जीव को होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा, यहाँ आत्मशास्त्र में जोड़ दिया, अभी तक उपयोग 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 उतना ही लेते थे आचार्य महाराज, क्या कहते थे, उपयोग, मैंने ज्ञान की क्रिया, अब ये उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा ऐसा कह दिया। कैसा है आत्मा? उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा है। तब यह उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा उपयोग सिवा, सिवा उपयोग अन्य कुछ भी भाव को करता नहीं, उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी उपयोग स्वरूपी आत्मा हूं और सहज जानन क्रिया उतना ही मेरा कार्य है। मेरी स्वरूप मर्यादा जानन क्रिया में समाप्त होती है, इससे आगे रागादि और परद्रव्य में मेरा कहीं भी अस्तित्व नहीं है, मेरी मौजूदगी नहीं कहीं पर, मेरे से बाह्य है, मेरे से भिन्न है। सिवा जानन क्रिया मुझे किसी के साथ लेना देना नहीं है, न लाभ है न नुकसान है, उसको भिन्नपणा कहने में आता है। इसलिए उपयोग सिवा अन्य भाव को या अन्य पदार्थ के परिणाम को स्वयं नहीं करता है, ऐसा अनुभव उसको होता है। इधर ज्ञानी हुआ, भिन्न होने से उसको ज्ञानी कहते हैं, और उसको ऐसा अनुभव रहता है कि सहज जानन क्रिया उतना ही मेरा कार्य है, इससे आगे रागादि भाव होता है उसको मैं करता नहीं हूँ, कराता नहीं हूँ, वो भला है ऐसा भी मैं अनुमोदन करता नहीं हूँ। सिर्फ ये साथ में संयोग में दूसरे पदार्थ हैं, ऐसे रागादि भाव जानने की चीज रह गई, उसमें अपनत्व होता नहीं, ममत्व नहीं होता, ऐसी एक स्थिति पैदा होती है। उस पर भगवान अमृत चंद्र आचार्य देव की एक टीका है। इस टीका में पांच पहलू से बात किया है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें पांच पहलू लिया है समझाने के लिए। पहली बात कहते हैं कि खरेखर एक वस्तु है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं। क्या कहते हैं? एक पदार्थ है, उससे दूसरा पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं। क्या कहते हैं? मैं जीव हूं तो शरीर से मेरा कुछ संबंध नहीं, ऐसा कहते हैं। क्या बात है? संसारी जीव को ऐसा अभिप्राय है, ऐसा परिणमन है, ऐसा अनुभव है कि मैं शरीर रूप हूं, शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूं, शरीर दुबला है तो मैं दुबला हूं, शरीर कुरूप है तो मैं कुरूप हूं, शरीर स्वरूप है तो मैं स्वरूपवान हूं, ऐसा शरीर रूप अपने को मानता है, निकट में है ना, आचार्य महाराज कहते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कुछ संबंध नहीं। शरीर से आत्मा जीता नहीं, आत्मा का जो जीवन है वो शरीर से नहीं है, संबंध ही नहीं शरीर से, ऐसा कहते हैं। संबंध नहीं है तो फिर घर पे जाते हैं तो शरीर साथ रहता है, मंदिर में आते हैं तो शरीर साथ रहता है, क्योंकि इतना संयोग होने पर भी मैं शरीर से भिन्न हूं ऐसा अनुभव करना है, यही ज्ञानानुभव है, यही आत्मानुभव है। आत्मा चैतन्य पदार्थ है, शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ चैतन्य से का कुछ संबंध होता नहीं, विजातीय पदार्थ होने से कोई संबंध नहीं है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का कोई संबंध नहीं है, कारण उसका कारण कहते हैं, क्योंकि दोनों का प्रदेश भिन्न होने से, प्रदेश मैंने क्षेत्र, पहली बात ये, पहला पहलू ये लिया कि एक का दूसरा का संयोग होता है लेकिन संबंध कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि दोनों का प्रदेश भी भिन्न होने से, प्रदेश मैंने क्षेत्र, परमाणु का क्षेत्र में जीव का क्षेत्र नहीं है, वो अजीव क्षेत्र है, और जीव का क्षेत्र है उसमें परमाणु नहीं है, क्योंकि जीव का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो सचेतन है, सचेतन नहीं है। दोनों का प्रदेश भिन्न होने से उन दोनों में आपस में एक सत्ता की अनुपपत्ति है, मैंने एक सत्ता नहीं है, अनुपपत्ति मैंने उत्पत्ति नहीं, उसको अनुपपत्ति कहते हैं, शास्त्रीय परिभाषा है। मैंने एक की अस्तित्व, सत्ता मैंने क्या, अस्तित्व, जीव का अस्तित्व में परमाणु का अस्तित्व नहीं, परमाणु का अस्तित्व में जीव का अस्तित्व नहीं, और ये प्रत्यक्ष रूप में समझ में आता है कि जिसको हम मृत्यु कहते हैं उस पर उस वक्त क्या होता है कि जीव का अस्तित्व वहां नहीं मालूम पड़ता। डॉक्टर क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट में कि अभी उसमें जीव नहीं है, उसको अंतिम क्रिया कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अस्तित्व है, सारे शरीर के जो अनंत परमाणु थे उसका अस्तित्व वहां है, लेकिन जीव का अस्तित्व नहीं है। जब जिंदा है आदमी ऐसा बोला जाता है तब क्षीर निर्वित संबंध है, क्षीर मैंने दूध और नीर मैंने पानी, दूध में पानी डाल दिया तो ऐसा लगता है कि दूध बढ़ गया, पानी दूध में मिला गया, मिला दिया, मिलता है क्या दूध में पानी? दूध में पानी मिलता हो तो इतना पानी डाले कि डालते ही रहे, लेकिन पानी हमेशा पानी रहता है और दूध हमेशा दूध ही रहता है, पानी का दूध कभी बनता नहीं। संयोग होने पर भी पानी का दूध जैसे नहीं बनता, वैसे संयोग होने पर भी शरीर आत्मा नहीं बनता, ना आत्मा कभी शरीर रूप हो जाता है, वो कभी न कभी जुदा मालूम पड़ने में आता है। तो आचार्य महाराज ने बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इस बात को समझाया है, ये साइंस है। जैन दर्शन में प्रधानता विज्ञान की है। क्या हमने एक आदमी को ने पूछा, एक प्रश्न पूछा कि आप धर्म के क्षेत्र में हमने सुना है कि काफी समझते हो तो हमको एक प्रश्न है, ऐसा करके बोला। आदमी बुद्धिमान था, थोड़ा काफी साहित्य पढ़ा हुआ था, सब साहित्य पढ़े, रजनीश का भी पढ़े, दूसरा का भी पढ़े, तीसरा का भी पढ़े, सबका पढ़े। देवचंद भाई क्या है, जिसको बुद्धि का सूक्ष्म ज्यादा होता है तो शक्ति का तो फिर कोई ना कोई काम तो होता रहेगा। तो सीधा एक प्रश्न कर दिया कि धर्म क्या चीज है। हमने ये सीधा जवाब दिया कि धर्म एक साइंस है। क्या है? धर्म एक विज्ञान है। वो चौंक गया। क्यों? कि लोग में ऐसी, समाज में ऐसी मान्यता है कि कुछ किसी न किसी प्रकार की रूढ़ि रिवाज जो बन जाती है उसको लोग धर्म कहते हैं। जैसे कोई जप तप करता है तो क्या धर्म करता है, पूजा भक्ति करता है तो क्या धर्म करता है, दया दान करता है तो क्या कहते हैं, धर्म करता है। हम कहते हैं कि वो कोई धर्म है नहीं, न धर्म का वो स्वरूप है, न धर्म का कोई कारण भी है इसमें, वहां कोई धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं है उसको अधर्म कहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। धर्म नहीं उसको अधर्म ऐसा कहो, ओ मैंने नहीं। तो धर्म क्या है? तो बात तो था, तो वो ऐसे कुल धर्म से तो जैन था दिगंबर, तो वो कैसे धर्म विज्ञान है? वो कैसे? तो मैंने एक सूत्र है हमारे शास्त्र में, ये सूत्र है कि वत्थु सहावो धम्मो। क्या है? वस्तु का जो स्वभाव वो धर्म है। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है, उसी को धर्म कहते हैं। देखो किस कैसी वैज्ञानिक परिभाषा है धर्म की, डेफिनेशन जिसको कहते हैं। ये जैन शास्त्र के अलावा, जैन आगम के अलावा ऐसी धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा कहीं भी देखी नहीं जाती। इधर ही एक परिभाषा ऐसी है, वत्थु सहावो धम्मो। तो यहां भी वस्तु विज्ञान से बात किया। देखो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, इसमें धर्म कहां आया? कि ऐसा उनका स्वभाव है वो धर्म है। एक वस्तु मैंने जीव, मैंने मैं अपने एक वस्तु हूं, जीव मैंने एक मैं वस्तु हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरी मौजूदगी है। मेरी मौजूदगी में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, मिलावट नहीं है मेरे में। क्या कहते हैं? एक में दूसरा मिल जावे उसको मिलावट कहते हैं। तो ऐसा मिलावट जीव वस्तु में नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक के अस्तित्व में दूसरा का अस्तित्व नहीं पाया जाता। दोनों का प्रदेश भिन्न हो, वासे प्रदेश मैंने सत्ता, एक सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं है। और इस प्रकार से एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होने से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आधार आधे संबंध भी नहीं है। मैंने जीव का अस्तित्व शरीर के आधार से नहीं है। शरीर छूट जाता है, जीव छूट मरता नहीं है, जीव जिंदा ही रहता है, जीव कभी मरता नहीं। लोग ये कहेंगे कि फलाना फलाना मर गया, बात गलत है। कोई जीव मरा नहीं है, एक भी जीव मरता नहीं, एक भी नया जीव पैदा होता नहीं। ये तो आज का विज्ञान कहते हैं कि किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो नया उत्पन्न होता नहीं, न कभी वो खत्म भी होता है, किसका सर्वनाश कभी होता नहीं, रूप से रूपांतर होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है, शास्त्रीय परिभाषा में पर्याय से पर्यायांतर होता है ऐसा कहने में आता है। लेकिन जीव कभी नाश होता नहीं, न जीव की कभी उत्पत्ति होती है। इसलिए आधार आधे संबंध नहीं है। जब देह के आधार से मैं जीता नहीं, जिंदा रहता नहीं, तो फिर खुराक के आधार से, अनाज पानी हवा के आधार से मैं जिंदा रहता हूं, सो बात रहती नहीं है। क्या नहीं खाने से सिद्ध भगवान को कि अनंत वीर्य, अनंत ताकत में से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरिहंत भगवान में तो विवाद है, श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि अरिहंत खाते हैं, दिगंबर मानते हैं कि अरिहंत नहीं खाते। अपन छोड़ो इस बात को, लेकिन सिद्ध भगवान तो नहीं खाते, उसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें श्वेतांबर दिगंबर दोनों एक मत है कि सिद्ध भगवान को देह नहीं है, देह में खाने पीने का होता है, जब वो तो अशरीरी परमात्मा है, वो खाते नहीं है तो दुर्बल हो जाते, कि ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए परमाणु से जीव में शक्ति नहीं आती, जीव की शक्ति जीव में है। इस परमागम में जीव की शक्तियों का वर्णन पीछे आया है, आता है 47 शक्ति का वर्णन। इसमें पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व शक्ति। आत्मा में जीवत्व नाम की एक शक्ति है, वो शक्ति कितनी बड़ी है कि उतनी बड़ी है कि जिसकी हद नहीं उतनी बड़ी है, बेहद बड़ी है, वो अनंत है। शक्ति कभी सीमित नहीं होती, जैसे अग्नि है, एक अग्नि के कण में शक्ति कितनी, जिसको अपन तिखारा कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, चिंगारी। अग्नि की एक चिंगारी में कितनी शक्ति के सारे जगत को जला देवे, इतनी कितनी। चिंगारी छोटी दिखती है लेकिन शक्ति कितनी कि बेहद शक्ति है, जितना भी लाओ जल जाएगा, जितना भी आवे जल जाएगा। ऐसे आत्मा में जीवन शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, कितनी है, अनंत है। अनंत जीवत्व होने से आत्मा कभी मरता नहीं। देखिए, जिसको ऐसा अनुभव ज्ञान होवे उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। क्या सबसे बड़ा भय कौन सा है? जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको दूसरा किसी प्रकार का भय रहने का सवाल नहीं। जो वाघ सिंह से डरता नहीं, क्या वो चूहा से डरेगा? हाँ, बाघ सिंह से जो नहीं डरता वो चूहा से कैसे डरेगा? ऐसे जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको दूसरा कौन सा भय हो रहेगा कि एक भी भय उसको रहने का सवाल नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय है। इस शास्त्र में संवर के बाद निर्जरा का एक अधिकार है, उसमें वो बात लिया है आचार्य महाराज ने कि सम्यक दृष्टि को किसी भी प्रकार का भय नहीं, आलोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, चोरी का भय नहीं, संरक्षण का भय नहीं, अकस्मात का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, वेदना का भय नहीं, किसी का भय भी नहीं रहता उसको। क्यों? कि ये सभी प्रकार का भय संयोग आश्रित है और आत्मा असंग तत्व होने से, असंग स्वरूप का अनुभव में निर्भयता निशंकता उत्पन्न हो जाती है, कहीं भी भय रहता नहीं है। सबसे बड़ी बात है सभी जीव को आत्म स्वरूप के असंग स्वरूप के अभानपणे में बेभानपणे में भय का होना अनिवार्य है। भय का उपयोग होवे तब तो मालूम पड़े ही पड़े, लेकिन भय की परिणति हो जाती है तो निर्भय रह नहीं सकता, इसलिए हमेशा दुखी है। संसारी जीव हमेशा दुखी ही है, क्योंकि इनको पता है कि कब शरीर छूट जाएगा, मैंने कब मैं मर जाऊंगा, कब मेरी संपत्ति चली जाएगी, कब मेरे परिवार में से कौन चला जाएगा, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना बड़ा ट्रैफिक है, अरे बम्बार्डिंग भी हो जाता है, कब क्या होगा कैसे मालूम पड़े, कब इनकम टैक्स का रेड आ जाएगा। भाई तो हमेशा भाई बना ही रहता है जीव को, तो भाई की एक परिणति बन जाती है। देखो इसको परिणति कहते हैं, हमेशा भयान्वित रहता है परिणति में, उसको दुख 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 की परिणति चालू ही चालू रहती है। सम्यक दर्शन से सबसे पहला काम ये होता है आत्मा निर्भय हो जाता है। निर्भय होने से भय का दुख मिट जाता है, एक सुखी हो जाता है, कोई किसी की उनको परवाह नहीं रहती, किसी भी प्रकार का भय की परवाह उनको नहीं रहती। ऐसी एक निर्भयता निशंकता के साथ हमेशा चालू रहती है, उसकी भी परिणति बन जाती है उसको, एक सबसे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। सर सर काटेगा तो चारित्र मोह का अल्प भय होगा, लेकिन सर्प ने मुझे काटा है ऐसा अनुभव नहीं होगा। क्या सर्प ने मुझे काटा है ऐसा अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जीव को सर्प स्पर्श कर सकता नहीं है, शरीर को काटा है, जीव को नहीं काटा है। सामने से आवे तो भले आवे, मेरे में आने वाला नहीं है ऐसा ज्ञान होगा, उसको पहले ज्ञान होगा है? तो सम्यक दृष्टि का प्रश्न करता है, मुनिराज का नहीं करते हैं। तो क्या है, चारित्र मोह जहां तक सम्यक दर्शन दृष्टि को है अल्प भय होता है, मुनिराज को तो कुछ भय चारित्र मोह का भी होता नहीं। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में तो सर्प भी बहुत होते हैं, शहर में नहीं होते, लेकिन जंगल में तो बहुत रहते हैं, आते हैं सर्प देखते हैं, वो विचलित नहीं होते, अपने स्थान से विचलित नहीं होते, और शरीर आकर के शरीर पर चढ़ जावे तो भी उसको दूर नहीं करते, हटाते नहीं अपने शरीर पर से। क्यों? क्यों उनको उतनी स्थिरता है अपनी श्रद्धा ज्ञान में कि आत्मा को वो काट नहीं सकता, आत्मा को वो खा नहीं सकता, आत्मा को वो स्पर्श भी नहीं कर सकता, और आत्मा चैतन्य वज्र है, उसमें कुछ हानि नुकसान वो नहीं कर सकता। शरीर काटे भी उनके शरीर को, ऐसा नहीं है कि मुनिराज को सर्प नहीं काटे शरीर को, इनके शरीर को काटे और आयुष्य पूरा होने वाला हो तो शरीर और आत्मा अपना क्षेत्र छोड़ देवे, भिन्न भिन्न हो जावे, तो आत्मा को क्या हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ। जब मुनिराज का आत्मा को कुछ नहीं हुआ तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, शरीर को काटा, शरीर और आत्मा अलग हो गया, आत्मा को क्या हुआ इस वक्त, कि आत्मा कहीं और जगह चला गया, उसके साथ शरीर का जहर जाता नहीं है, जहर चढ़ता ही नहीं आत्मा को, अज्ञानी को आत्मा को भी नहीं चढ़ता, ज्ञानी को आत्मा को भी नहीं चढ़ता। जहर की व्याप व्यापकता में आत्मा की व्याप व्यापकता नहीं, आत्मा की व्याप व्यापकता में जहर की व्याप्ति नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। ये जो सिद्धांत है आचार्य महाराज ने लिखा है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, उसका आधार आदेश संबंध नहीं है, तो ये इतनी एक सत्य हकीकत है, एक परम सत्य है कि इस परम सत्य को कोई जगत में मिटा सकता नहीं। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, देव हो या मनुष्य हो, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र वस्तु के स्वरूप में कोई हेरफेर कर सकता नहीं, ऐसी चीज है। माने नहीं माने दूसरी बात है, लेकिन मानने से कोई वस्तु नहीं बदल जाती। हम कांच को हीरा माने तो उसकी कीमत नहीं आती, और हीरा को कांच माने तो उसकी कीमत नहीं चली जाती। चली जाती क्या? ये नकली रुपया बनाते कि नहीं? पहले चांदी के रुपया आते, और चांदी के नहीं बनाते, नकली बना देते ऐसे धातु के, सफेद धातु के। तो चांदी पर मोहर नहीं लगावे तो क्या उसका पैसा नहीं आएगा? आएगा, जो भाव है वो मिलेगा। और नकली धातु पर मोहर लगा दिया तो उसका पैसा मिलेगा क्या? पीछे फेंकेगा, ये नहीं चलने वाला, इधर नहीं लाओ ये, इसको ले जाओ कोई और जगह, ये बात हो जाएगी। इसलिए मानने से कोई, गलत मानने से कोई वस्तु बदल जाती है ऐसा कभी नहीं बनता। ये एक तीसरी बात की सिद्धि कर दी, दो बात करके, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं अलग अलग है, और दोनों की, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग है। जब दोनों की सत्ता अलग 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 है तो उसमें से ये फलित तो होता है कि एक के आधार से दूसरा का आधे संबंध नहीं रहता, आधार आधे संबंध नहीं है। ये बात बहुत वजनदार की आचार्य महाराज ने। संसारी जीव को पर पदार्थ की आधार बुद्धि ही दुख का कारण है। पर पदार्थ की आधार बुद्धि में से पराधीनता होती है, और पराधीनता में दुख ही दुख रहता है, कभी सुख होता नहीं। बहुत सुंदर, अति सुंदर न्याय है ये, लॉजिक है बहुत बड़ा। इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप मैंने दृढ़ रूप से रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में रहता है, प्रतिष्ठा मैंने अच्छी तरह रहता है, दूसरे पदार्थ में आना जाना किसी पदार्थ को बनता नहीं है। दूध पानी नहीं बनता, पानी दूध कभी बनता नहीं है, ऐसी बात है, अपने में ही रहता है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अच्छी तरह रही है, प्रतिष्ठित मैंने अच्छी तरह रहा है। जगत की प्रतिष्ठा में तो प्रतिष्ठा का ये हो जाए, चलो इसकी आबरू चली गई, पहले बहुत अच्छा प्रतिष्ठान था, क्या कहते हैं, अच्छी गद्दी पेड़ी जमाई हुए तो हमारा ये तगड़ा प्रतिष्ठान है, लेकिन वो अनंत काल रहने वाला नहीं है, कुछ काल तक रहता है। और जीव में अपना स्वरूप की प्रतिष्ठा है, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा मैंने स्थापना, उसमें कभी कहीं गड़बड़ी होती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होती। जीव में से जीव कभी नहीं चला जाता, शरीर में से जीव चला जाएगा, लेकिन जीव में से जीव कभी चला जाएगा नहीं। इतनी दृढ़तर प्रतिष्ठा जीव में जीव स्वरूप की होती है। ऐसा अगर अच्छी तरह यथार्थ रूप से अपने ज्ञान में श्रद्धान में जज गया तो फिर हमें कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा मेरे स्वरूप में से जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं मेरे स्वरूप में अनादि अनंत रहने वाला हूं, और मेरे स्वरूप में क्या है कि अनंत सुख है। प्रथम तो आत्मा के जीव के स्वरूप में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, वीर मैंने अनंत पुरुषार्थ, ये तो सब है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे में मेरा अनंत सुख है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मेरे सुख के लिए मुझे किसी का आधार लेने की जरूर नहीं है। दुकानदार कितनी भी बड़ी दुकान लेकर बैठा हो बाजार में, ये बड़े बड़े शोरूम लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लेकिन ग्राहक के पास तो उसको दीनता करनी पड़ती ही है। पधारो पधारो क्या कहते हैं, है? कितनी दीनता करते हैं, चाहे ग्राहक दुकानदार से भी गरीब हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि दुकानदार जितना पैसे वाला हो ग्राहक इससे ज्यादा पैसे वाला हो, ये कोई जरूरी नहीं। कैसा भी आदमी आता है खरीदने को तो उसको क्या कहेगा, पधारिए पधारिए, आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं, क्या बोलेगा, हैं? आपकी मैं क्या सेवा कर, कैसे, देखो कैसी दीनता आती है, बड़े बड़े आदमी को दीनता कैसे आती है, हैं? हैं? इसलिए तो दृष्टांत देता हूं, अनुभव का तो दृष्टांत देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर होता है, वोट लेने के लिए गरीबों के बीच में जाता है, कहां हिंदुस्तान में बस्ती इनकी ज्यादा है, वोट बैंक वो है, गरीब लोगों नेताओं के वोट बैंक होने से भले वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है लेकिन पहले दीनता करता है बाद में बैठता है, क्या हालत है इसकी, और फिर 5 साल के बाद वही परिस्थिति, 5 साल तक भले ही हुक्म चलावे लेकिन बाद में फिर उसको लंबा हाथ करना पड़ता है, मुझे कुछ वोट दे दो, मुझे कुछ वोट दे दो, ये हालत है लोगों। यहां कहते हैं कि तेरे में तेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा उतनी है, तुझे किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है, कोई आधार देने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्थापन किया है यहां पर। ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विषय में भिन्नपना के कारण आधार आधेय संबंध रहित है, ऐसा एक वैज्ञानिक तौर से पदार्थ विज्ञान की स्थापना पहले कर दी है आचार्य महाराज ने। अब कहते हैं कि देखिए तुझे भेद विज्ञान कैसे करना है, ये बात जो कही, ये तो जो बात भेद विज्ञान कराना है उसका डेटा है, मैंने वो प्राथमिक विज्ञान का स्थापन कर दिया। इस विज्ञान के आधार से भेद विज्ञान कैसे करे जिससे आत्मा को सुख शांति की प्राप्ति हो, उसको सुख शांति मैंने धर्म की प्राप्ति हो, धर्म मैंने सुख शांति की प्राप्ति हो, ये बात आगे जा करके आचार्य महाराज खोलेंगे। आज का समय हुआ सहजात्म स्वरूप।